बहुत से शब्दों की तो विचित्र दशा हुई, जैसे पर्यक ग्रंथ शब्द बदलता बदलता पालती हो गया, उपाध्याय शब्द परिवर्तित होते होते झा हो गया, भ्रातृजाया शब्द बदलकर भौजी हो गया, मातृश्वा का मौसी हो गया आदि आदि। इस तरह विविध प्रकार के शब्द परिवर्तनों द्वारा भी भाषा परिवर्तन होता रहता है। तीसरा, पद परिवर्तन। प्रत्यय विभक्ति या क्रिया चिन्ह के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें पद कहते हैं। प्रत्येक शब्द तब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता जब तक वह पद का रूप ग्रहण नहीं करता। जैसे राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम ने रावण को और मारा ये तीन पद हैं। राम के साथ जब ने विभक्ति का योग हुआ है तब राम ने कर्ता शब्द बना है। रावण के साथ जब को विभक्ति का योग हुआ है तब रावण को कर्म पद बना है, और मारना क्रिया के साथ जब अंत में आ प्रत्यय का योग हुआ है तब मारा भूतकाल का क्रियापद बना है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी शुभंत अर्थात विभक्तियों और दिगंत अर्थात ती सी इंत आदि क्रिया चिन्हों के योग से ही पद बनाए जाते हैं। जैसे राम ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। इस वाक्य में राम में सु विभक्ति के योग से कर्ता पद बनाया गया है, ग्रामम में अम विभक्ति के योग से कर्म पद बनाया गया है, और गच्छति क्रिया में ति क्रिया चिन्ह के योग से वर्तमान कालीन क्रियापद बनाया गया है। इस पद निर्माण की यह पद्धति पहले प्राकृत एवं अभ्रंशों में आकर परिवर्तित हुई, और हिंदी भाषा के आविर्भाव के साथ साथ यह पद पद्धति और बदल गई। इसी कारण संस्कृत में रामः ग्रामं गच्छति को ब्रज में राम गौ कुजातु है बोला जाता है, कन्नौजी में राम गांव कुंजात है कहा जाता है, बुंदेली में राम गांव को जात है, खड़ी बोली में राम गांव नु जावे हैं, बांगरू में राम गांव ने जाबे से, अवधि में राम गांव कौ जात है, बघेली में राम गांव कह जात आ, छत्तीसगढ़ी में राम गांव को जात है, और परिष्ठित हिंदी में राम गांव को जाता है आदि आदि। इन सभी वाक्यों में आकर पदों के निर्माण में कैसा कैसा परिवर्तन हुआ है यही भाषा परिवर्तन की दिशा बता रहा है। चौथा, वाक्य परिवर्तन। वाक्यों के निर्माण से भी भाषा परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। प्रायः पदों के योग से वाक्य बनते हैं। संस्कृत के युग में वाक्य रचना इतनी व्यवस्थित एवं स्पष्ट थी कि कोई भी पद किसी भी स्थान पर रख दो तब भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता था। जैसे यदि मैं गांव को जाता हूँ वाक्य में संस्कृत वाक्य को संस्कृत में कहें तो अहम ग्रामम गच्छामि कह सकते हैं, गच्छाम्यहम ग्रामम कह सकते हैं, ग्रामम अहम गच्छामि कह सकते हैं, गच्छामि ग्रामम अहम भी कह सकते हैं, और इन वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही दिशा कुछ काल तक प्राकृत और अभ्रंशों में भी रही, क्योंकि विभक्तियों एवं प्रत्ययों के संयोग से वाक्य के सभी पद इतने व्यवस्थित ढंग से निर्मित होते हैं कि उनको कहीं भी किसी स्थान या क्रम में रख दीजिए उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता था। परंतु हिंदी का आविर्भाव होते ही वह व्यवस्था न रही। हिंदी के वाक्य में यदि पदों का क्रम इधर उधर कर दिया जाए तो अर्थ तुरंत बदल जाता है। जैसे शेर बकरा खाता है और बकरा शेर खाता है, इन दोनों वाक्यों में अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हिंदी में आकर यह व्यवस्था हुई कि पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रियापद आना चाहिए। अंग्रेजी में पदों के क्रम की समुचित व्यवस्था मिलती है, वहाँ भी किसी पद को कहीं भी रख नहीं सकते। जैसे राम बिट्स मोहन और मोहन बिट्स राम में बड़ा अंतर हो जाता है। पहले वाक्य में राम मोहन को मारता है और दूसरे वाक्य में मोहन राम को मारता है, अतः दोनों वाक्यों के अर्थ में पर्याप्त भेद हो जाता है। इसीलिए अंग्रेजी में यह व्यवस्था मिलती है कि वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया और तत्पश्चात कर्मपद आना चाहिए। अतः संस्कृत भाषा के वाक्य में जो क्रम की परवाह नहीं होती थी वह परिवर्तित होकर हिंदी में क्रम को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। ऐसे ही संस्कृत में राम गच्छति, सीता गच्छति आदि वाक्यों में राम पुल्लिंग तथा सीता स्त्रीलिंग के लिए एक ही क्रिया गच्छति का प्रयोग हुआ है, किंतु हिंदी की वाक्य रचना में क्रिया लिंग के अनुसार बदल जाती है। जैसे राम जाता है और सीता जाती है। इसी प्रकार संस्कृत के वाक्य में प्रायः विशेषण में भी उसी प्रत्यय या विभक्ति का योग रहता है जो विभक्ति या प्रत्यय संज्ञा पद में लगाई जाती है। जैसे संस्कृत में पीतानि पर्णानि पतन्ति, दुग्ध धवला चंद्रिका आह्लादयति और शस्य श्यामला भारत माता मनांसि मोहयति, इन वाक्यों में पर्णानि की तरह उसके विशेषण पीतानि में विभक्ति लगाई गई है। चंद्रिका की तरह उसके विशेषण दुग्ध धवला में प्रत्यय लगाई गई है और भारत माता में जो विभक्ति एवं प्रत्यय है वही उसके विशेषण शस्य श्यामला में लगाई गई है। यह नियम हिंदी के वाक्यों में आकर पूर्णतः बदल गया है। जैसे यहाँ सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर लड़का जा रहा है, सुंदर लड़की जा रही है आदि वाक्यों में संज्ञा के समान ही प्रत्ययों एवं विभक्तियों का प्रयोग हिंदी के उक्त विशेषणों में नहीं हुआ है। इस प्रकार वाक्य परिवर्तन के द्वारा भी भाषा परिवर्तन का ज्ञान होता है, अतः वाक्य परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की एक दिशा है। पांचवा, अर्थ परिवर्तन। भाषा परिवर्तन की दिशा का ज्ञान अर्थ परिवर्तन से भी होता है। प्रायः जो शब्द पहले जिस अर्थ में प्रयुक्त होते रहते हैं कालांतर में उन शब्दों का प्रयोग अन्य अर्थों में भी होने लगता है। इस अर्थ परिवर्तन का कहीं विस्तार देखा जाता है, कहीं संकोच देखा जाता है और कहीं अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे तेल शब्द का मूल अर्थ था तिल का साल, किंतु कालांतर में इस शब्द के अर्थ में इतना विस्तार हुआ कि सभी पदार्थों के सार को तेल कहने लगे। इसीलिए आज सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, मिर्च का तेल, मिट्टी का तेल आदि कहा जाता है। इसी तरह पहले मृग शब्द का प्रयोग संपूर्ण जंगली जानवरों के लिए होता था, किंतु इस शब्द का अर्थ संकोच हो जाने के कारण अब हिंदी में मृग केवल हिरण के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ऐसे ही महाराज शब्द पहले बड़े राजा के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु इसका अर्थ बिल्कुल बदलकर रसोइया हो गया और वर का पहले ज्येष्ठ होता था, परंतु आजकल हिंदी में वर का अर्थ दूल्हा हो गया है। इस प्रकार विविध अर्थ परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि अर्थ परिवर्तन को भी भाषा परिवर्तन की एक दिशा माना जाता है।